आज है 6 जून दिन शनिवार। स्वागत है आपका इंडिया बोल में, मैं हूं सुशीला सिंह। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के चरमपंथ पर कांटे से कांटा निकालने के बयान ने बहस छेड़ दी है। क्या चरमपंथ से निपटने का ये तरीका सही है? क्या आदिवासियों के सलवा जुड़ूम से माओवाद को खत्म किया जा सकता है? क्या लोकतंत्र में ऐसे तरीके कारगर हो पाएंगे? इसी मुद्दे पर होगी आज इंडिया बोल में बहस, लेकिन अब से थोड़ी देर में पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार, निखिल रंजन से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की बांग्लादेश यात्रा पर ढाका गए हैं। इस दौरान दोनों देशों ने आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए 19 से ज़्यादा समझौतों पर दस्तखत किए हैं। इनमें भूमि सीमा समझौता भी शामिल है, जिसमें दोनों देशों ने ऐतिहासिक करार दिया है और उम्मीद जताई है कि सीमा विवादों को अब हल कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना ने आज दोनों देशों के बीच 2 बस सेवाओं की भी शुरुआत की। इस मौके पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद थी। संयुक्त प्रेस वार्ता में भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा,
माई डीपली हेल्ड बिलीव इन द शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी ऑफ नेबर्स।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि वो अपने देश के विकास के साथ पड़ोसी देशों को संपन्न बनाने और उनके विकास में यकीन रखते हैं, और उन्होंने जो सपना भारत के भविष्य के लिए देखा है, वही बांग्लादेश के भविष्य के लिए भी इच्छा रखते हैं। इस मौके पर भारतीय प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश को 20 करोड़ अमरीकी डॉलर की मदद देने के साथ ही 2 अरब डॉलर की क्रेडिट लाइन शुरू करने की भी घोषणा की है। सऊदी अरब ने कहा है कि उसने यमन से होती विद्रोहियों के दागे एक स्कड मिसाइल को मार गिराया है। अधिकारियों का कहना है कि मिसाइल खमीस मुशायद शहर की तरफ जा रहा था, तभी इसे बीच में रोक लिया गया। मिसाइल का दागा जाना इस क्षेत्र में संघर्ष को बढ़ा सकता है। सऊदी अरब और होती विद्रोहियों के प्रतिनिधि अगले हफ्ते स्विट्जरलैंड में होने वाले शांति वार्ता में शामिल होंगे। तुर्की की पुलिस ने जानकारी दी है कि शुक्रवार को एक चुनावी रैली में हुए 2 धमाके में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 400 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। रैली कुर्द समर्थक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की थी। धमाका दक्षिण पूर्वी दियार बाकिर में हुआ। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अफगान महिलाओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने पहली बार तालिबान प्रतिनिधियों से बातचीत की है। ये बातचीत नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में हुई। इस अनौपचारिक बातचीत का मुद्दा महिला अधिकार था। पिछले महीने काबुल से आए प्रतिनिधियों ने तालिबान के साथ कतर में बातचीत की थी। विश्लेषकों का कहना है कि ये कदम भविष्य के लिए सत्ता में हिस्सेदारी पर समझौते के मकसद से उठाए जा रहे हैं। यूक्रेन में समलैंगिकों की एक रैली के दौरान हुई झड़प के बाद 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चश्मदीदों के मुताबिक विवाद तब शुरू हुआ जब एक बस में दर्जनों युवा रैली की जगह पर पहुंचे और मार्च कर रहे लोगों पर हमला शुरू कर दिया। इस झड़प में कम से कम 25 पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर है। एक दक्षिण पंथी राष्ट्रवादी गुट ने इस परेड में तोड़फोड़ करने की धमकी दी थी। फ्रेंच ओपन टेनिस मुकाबले में नोवाक जोकोविच ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। सर्बियाई खिलाड़ी ने इंग्लैंड के एंडी मरे को 5 सेटों से ज़्यादा चले मुकाबले में हराया। अब उनका मुकाबला स्विस खिलाड़ी स्टान वावरिंका से रविवार को होगा। अगर वो ये मुकाबला जीत जाते हैं तो वो दुनिया के 8वें ऐसे खिलाड़ी होंगे जिन्होंने 4 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। बीबीसी समाचार।
नेता बोले, अफसर बोले, पैसा बोला, बंदूक बोली, अभिनेता विलेन बोले, नहीं बोल सके तो बस आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
क्या चरमपंथियों का मुकाबला चरमपंथियों से ही किया जाना चाहिए? रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के चरमपंथ को खत्म कर जड़ से खत्म करने के लिए कांटे से कांटा निकालने वाले बयान ने बहस तेज कर दी है कि क्या चरमपंथ से मुकाबला करने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल सही है। हालांकि ये तरीका नया नहीं है। पंजाब, भारत प्रशासित कश्मीर, असम या छत्तीसगढ़ चरमपंथ या अलगाववादियों से निपटने के लिए ऐसे ही तरीकों का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये कितना सफल हुआ है? क्या इससे मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ? लोकतंत्र में ये तरीका कितना जायज़ है? इन्हीं सभी मुद्दों पर इंडिया बोल में आज बहस होगी। स्वागत है सभी श्रोताओं का, और इन्हीं मुद्दों पर बहस करने के लिए हमारे साथ फ़ोन लाइन पर पंजाब पुलिस के पूर्व DGP KPS गिल, मानवाधिकार कार्यकर्ता और पत्रकार गौतम नवलखा और सलवा जुड़ूम के छविंद्र कर्मा भी अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। श्रोताओं, आप भी अगर कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो हमें मुफ्त फ़ोन कीजिए 1811-7000 और 1811-7001 पर। सबसे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं KPS गिल से। मुझे ये संदेशा मिल रहा है कि KPS गिल हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं। आपसे नौलखा साहब शुरुआत करना चाहेंगे कि ये जो तरीके अब तक अपनाए गए, चाहे पंजाब हो, चाहे हम असम की बात करें या कश्मीर की बात करें, ये इन जो तरीके अपनाए गए हैं, इनका आपने कितना असर देखा है?
देखिए, अगर हम इन घिनौने तरीकों को इसके असर के रूप में अगर हम उसकी परीक्षा करना चाहें, तो वो हमें ये बताएगा कि देखिए, पंजाब में इतना खून खराबा करके, ऐसे घिनौने तरीके इस्तेमाल करके आपने खालिस्तानी आंदोलन को कुचल ज़रूर दिया, लेकिन वो जो दाग थे वो आज भी मौजूद हैं, और उसके खिलाफ आज भी, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, तो जम्मू में पिछले 2-3 दिनों में जो वारदातें हुई हैं वो भी इसका जीता जागता सबूत है। अन्य जगहों में देखें तो आप पाएंगे कि न जम्मू कश्मीर में, अपने जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर पूर्व में, आसाम वगैरह अन्य इलाकों में, जैसा अभी हाल में जिस तरीके का जो हादसा हुआ मणिपुर में, ये सब साफ बताता है कि ये तरीका आपको कभी सफल नहीं बना सकता। और अगर आप सफलता इस मायने में हासिल करें कि हुकूमत ने अपना अधिकार दोबारा स्थापित कर दिया है, चाहे उसमें कितने लोगों की जाने गई हैं या कितने घर बर्बाद हो गए हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उससे जो दाग रह जाते हैं और जो जख्म रह जाते हैं, जो सिलसिला और कार्रवाई और लोगों के जो 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 संघर्ष हैं इंसाफ के, वो चलते रहते हैं, वो इसका एक बहुत बड़ा, कहना चाहिए, एक कीमत हमें चुकानी पड़ती है, जो मुझे नहीं लगता है कि एक राजनीतिक हल जिस मामले को लेकर जिसका समाधान निकलना चाहिए, उसका सैन्य तरीके से अगर आप ये सोचें कि उससे उसका समाधान निकल जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि ये सही तरीका है और सफल अपने आप में माना जाना चाहिए।
जी गौतम साहब, हमारे साथ गिल साहब भी जुड़ चुके हैं। गिल साहब, आपने गौतम नौलखा को सुना, उनकी बातचीत सुनी, आप क्या कहना चाहेंगे कि ये कह रहे हैं कि खून खराबा होने से ही, मतलब कि जितना खून खराबा होना है वो ठीक नहीं है, इंसाफ के लिए गुहार लगाते रहते हैं लोग?
ये जो इंसाफ की बात ये कर रहे हैं, कहाँ हुआ ये इंसाफ? जिस तरीके से कह रहे हैं कि इंसाफ होता है।
जी गौतम साहब,
मैं कह रहा हूँ इंसाफ नहीं होता है, इंसाफ नहीं मिलता है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि ना इंसाफी,
जिस तरह से चरमपंथ को हटाने के लिए ही, चरमपंथ का सहारा लेने की सरकार जो बात कहती रही है, जिस नीति का इस्तेमाल करती रही है, गिल साहब, जैसे कि आपने भी जो है चरमपंथ को पंजाब में हटाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, तो इस ये और ये जो है नीति सरकार की पुरानी नीति है, लेकिन गौतम नौलखा का आपने बयान सुना अभी, वो उन्होंने जो टिप्पणी की है वो बात सुनी आपने, आप क्या कहेंगे कि अभी भी लोग जो है इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं? इतना खून खराबा हुआ, आम जनता मारी गई जो इनोसेंट थी।
तो खून खराबा तो आप अगर इंसाइट करेंगे तो होगा, अभी आप सोचते हैं कश्मीर में इंसाइट नहीं होगा। एक आदमी है, वो जाता है, जाना चाहता है पाकिस्तान में, ये कह के मैं इंडियन सिटीजन नहीं हूँ। और जो कश्मीर में जो ये एलिमेंट्स हैं, इनको हमेशा वो किया जा रहा है पॉलिटिकल मेथड से, उनको ऑल द टाइम दे आर बीइंग इंसाइटेड, फॉर लास्ट 30 इयर्स दे हैव बीन इंसाइटेड।
68 साल से कश्मीर का विवाद चल रहा है, हिंदुस्तान भी मानता है, पाकिस्तान भी मानता है, सारी दुनिया भी मानती है, हम सब मानते हैं, उस विवाद का अभी तक समाधान नहीं हुआ है। उस विवाद के चलते आप अगर किसी से ये कहें कि हम ज़बरदस्ती आपको हिंदुस्तानी मानते हैं, या उसको अपनी बात कहने का अधिकार नहीं रहता है, अपनी बात अपनी जो उसकी आकांक्षाएं हैं वो आप कहने नहीं देते हैं, तो आप क्या उम्मीद करते हैं लोगों से?
नहीं गौतम साहब, यहाँ पर कश्मीर का ही सवाल नहीं है, कश्मीर का ही सवाल नहीं है, यहाँ पर असम का सवाल है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ का सवाल है, पंजाब की बात हम लोग कर रहे थे इससे पहले, यहाँ पर हम इन राज्यों की बात कर रहे हैं।
देखो जहाँ तक पंजाब है, पंजाब तो क्वाइट रहा है, अब भी क्वाइट है, इतनी इलेक्शन आ चुकी हैं, अभी वहाँ पे पॉलिटिकल वो चल रहा है, इलेक्शंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, देश खुशहाल है, नई नई चीज़ें बढ़ रही हैं, और वो पंजाब में आप जाके देखो तो उसकी शक्ल बदली पड़ी है।
लेकिन आप जम्मू कश्मीर जाएं, छत्तीसगढ़ जाएं, झारखंड जाएं, उड़ीसा जाएं, उत्तर पूर्व जाएं, वहाँ स्थिति विपरीत है,
वहाँ अभी भी जो है मूलभूत अधिकारों के लिए लोग जो हैं अपनी लोग लड़ रहे हैं, उनको अभी भी किल्लत है उन सब चीज़ों की, अब उन्होंने देखी तक नहीं है मूलभूत सुविधाओं को अभी तक। हम ये जानना चाहते हैं गिल साहब कि जिस तरह से मनोहर पर्रिकर ने बात कही है कि चरमपंथ का मुकाबला चरमपंथ से ही किया जाना चाहिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां न्याय प्रणाली है, तो इस तरह की नीति की क्या जरूरत है?
अजी साहब, अगर आप टेररिज्म को टेररिज्म से नहीं मुकाबला करेंगे तो किस चीज से मुकाबला करें?
नहीं तो आपको कितना असर दिखाई देता है जी?
अभी ये बोलते हैं छत्तीसगढ़ में जाइए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, कहाँ चरमपंथ का मुकाबला होगा?
नहीं क्या एक ही तरीका है गिल साहब? क्या हमारे सामने इस मुल्क में 21वीं शताब्दी में मामलों के समाधान के एक ही तरीका है कि आप चरमपंथियों का चरमपंथियों के तरीके से इस्तेमाल करें, आतंक का आतंक से इस्तेमाल करें, जंग का जंग छेड़कर आप लोगों के हुकूकों का हनन करें, मतलब यही तरीका हमारा बना रहेगा आज 21वीं शताब्दी में भी? क्या और कोई तरीका नहीं हो सकता जहां लोगों से संवाद हो सके?
जी उन्हें बोलने दीजिए, उन्हें बोलने दीजिए गौतम जी।
इनकी जो ये philosophy I've seen a lot of time. Yeah, I remember when I was in Assam, to wahan se inhone ek slogan chalaya tha, from Naxalwadi to Nalwadi. Aur humne intelligence ke through inko bilkul khatam kar diya, 30 saal uske baad nahi gaye. Ab agar aap hukumat ko hi ye kar dete hain, if they get undermined by the propaganda of these far left people.
नहीं मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, जहां आप टेरर का जवाब टेरर से देने की बात करते हैं, इसका मतलब है कि कानून संविधान
भारत में है ही नहीं, भारत में है ही नहीं, भारत लोकतांत्रिक देश है, क्या यही तरीका सही है गिल साहब? क्या लोकतांत्रिक देश, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में यही तरीका सही है? क्या कोई और तरीका नहीं हो सकता?
टेररिज्म हैज नो प्लेस इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री।
नहीं तो उसका तरीका, उसको हटाने का, उससे निजात पाने का तरीका क्या सिर्फ यही है? हम ये जानना
चाहते हैं। मैं एकदम गिल साहब आपके साथ सहमत हूँ कि आतंक की कोई जगह किसी जगह नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आतंक सरकार की तरफ से हो या औरों की तरफ से, एकदम मैं मानने को तैयार हूँ। अफसोस की बात यह है कि आतंक आप जब सरकार करती है उसको आप जायज मानते हैं, जब लोग लड़ते हैं अपने संघर्ष के लिए तब उसको आप नाजायज करार करते हैं, उसे आतंक कहते हैं। कहाँ आप, चलिए छत्तीसगढ़ की हम बात करें, यहाँ से हटें, पर्रिकर साहब ने जो कहा वहाँ से हम छोड़कर हम हटें, पहुँचे छत्तीसगढ़ में, वहाँ के आदिवासी ये कह रहे हैं कि उनका 68 साल का ये उनका अनुभव है, उनका ये इतिहास है कि उनकी हर बार अवहेलना की गई है, उनके जो भी सरोकार हैं उसको नज़रअंदाज किया गया, और आज भी किया जा रहा है। उनसे कह रहे हैं कि आप अपना जंगल में जो छिपा खनिज है वो बड़े उद्योगों को शोषण करने के लिए उसकी छूटी छूट मिलनी चाहिए। ये तो सरकारी दस्तावेज खुद कह रहे हैं, सरकार की खुद के कमीशन की रिपोर्ट है जिसने इस बात की पुष्टि करी है। आज 2015 में एक नई रिपोर्ट है जो बार बार इस तरफ इशारा कर रही है, वर्जीनिया खाका की रिपोर्ट जो ट्राइबल मिनिस्ट्री को उसने दी है। हम कब तक हम चुप रहेंगे और कब तक हम आंख मूंद कर जो आप बात कर रहे हैं उसको हम मानते जाएं कि वही सरीका और एक एकमात्र तरीका है? बतलाइए मुझे कि आदिवासियों की अवहेलना आज भी करी जाए 21वीं शताब्दी?
जी गौतम साहब, उन्हें बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। जी गिल साहब,
देखिए, आई हैव बीन टू छत्तीसगढ़, आई हैव सीन व्हाट वाज हैपनिंग देयर। दैट इज नॉट अ मैटर व्हिच कैन नॉट बी सॉल्वड बाय टॉक्स एंड डिस्कशंस। Why are innocent human beings who are not at all concerned with the making of this policy, with the implementation of this policy?
Gil sahab, Hindi mein boliye please, Hindi. Ab hum aapse guzarish karte hain, Hindi mein please baat kijiye.
To unko kyon mara hai? Unko kyon naja jo इनोसेंट लोग हैं उनको क्यों मारा जा रहा
है? गिल साहब, यही ये बात हो रही है कि क्यों आम जनता पिस रही है इन लोगों के बीच में? क्या फेक एनकाउंटर्स नहीं होते हैं? आप बताइए,
क्या इनोसेंट लोग नहीं मारे जाते हैं? आप बताइए,
हम आपसे पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि जब इस तरह की नीति अपनाई जाती है,
जब मारे गए तो क्या हुआ?
नहीं, सवाल दूसरा है गिल साहब, सवाल ये है कि क्या खून खराबे की नीति के अलावा और कोई तरीका है ही नहीं हमारे सामने?
खून खराबे की नीति किसने इस्तेमाल की है?
सरकार की तरफ से
उसका क्या जवाब? खून खराबा ही होगा गिल साहब, हम ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं आपसे।
सबसे पहले ये लेफ्ट जो है, जो अपने आप को नक्सलाइट कहते हैं, जिनकी पैदाइश नक्सलिज्म से हुई, वो आके छत्तीसगढ़ में आ गया। छत्तीसगढ़ में कहाँ से आया? छत्तीसगढ़ में आया ये,
मतलब ये तो ताज्जुब की बात है गिल साहब कि अगर आंध्र प्रदेश से कोई आते हैं तो वो गैर हो जाते हैं, और यहाँ सरकारी फौज जो और राज्यों से भेजी जाती है वो अंदर के हो जाते हैं। ये ताज्जुब की बात है कि तो हम अपने ही लोगों को अलग थलग समझने लगे हैं। क्या किसी हिंदुस्तानी का हक नहीं है किसी भी इलाके में जाकर काम करने का?
गौतम साहब, उन्हें बोलने दीजिए, वो बोलना चाह रहे हैं। जी गिल साहब प्लीज बोलिए।
नक्सलिज्म खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। ये कुछ मर्सनरीज हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मध्य प्रदेश से आए हैं या आंध्र से आए हैं। दीज पीपल आर ऑल क्रिमिनल्स, दे आर नो रेवोल्यूशनरी।
ये सरकारी की आपकी नजर में हो सकते हैं, सरकार की नजर में हो सकते हैं, ये एक राजनीतिक आंदोलन है, वैध है और जायज है। अगर लोगों को आप नहीं सुनिए गिल साहब, अगर आदिवासी
साहब, उन्हें बोलने दीजिए, उन्हें बोलने दीजिए।
जी,
आप बोलिए बोलिए।
He is a trained speaker in Hindi. I am not a speaker in Hindi. I don't know the language.
नहीं, आप आराम से बात कीजिए। जी जी गिल साहब, प्लीज।
ये अपनी मारी जा रहा है। Using words, you think I don't know these words?
नहीं।
I don't think you know. I don't know these people.
नहीं, गिल साहब यहाँ पर मैं
नहीं देखिए गिल साहब, आप कितना किसी को माफ करिए, आप किसको कितना समझते हैं, क्या आते हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है।
गौतम साहब, मैं एक,
आप बात करिए,
गौतम साहब वो अपनी बात रख रहे हैं, आप उनको बात करने का मौका भी दीजिए। हम गिल साहब मैं यहाँ पर एक श्रोता को लेना चाहूंगी। हमारे साथ एक श्रोता बहुत लाइन देर से जुड़े हुए हैं, ये इनका नाम है संजय। संजय, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो संजय, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछें।
जी, हम बेगूसराय से बोल रहे हैं।
जी, बेगूसराय से बोल रहे हैं। हमारे साथ गिल साहब हैं और गौतम नौलखा साहब हैं। क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप?
जी, सवाल हम कोई कुछ नहीं पूछना चाहेंगे, सिर्फ अपना राय देना चाहेंगे।
जी बताइए, क्या राय देना चाहते हैं आप?
जी, राय हमारा यही है कि हमारे देश को जो रक्षा मंत्री हैं पर्रिकर जी ने
जी
टिट फॉर टैट रवैया अपनाया है, ये हमारे जनतंत्र के लिए असहनीय है। और ये जो नीति है, ये रवैया है, काफी कठिन है। लेकिन दूसरी ओर जहाँ हम देख पा रहे हैं बरसों से हम लोग जो इन समस्याओं से त्रस्त हैं, तो दूसरा कोई विकल्प भी नहीं मिलता है। संवाद तो भी होता है लेकिन कोई निर्णय नहीं मिलता है, तो क्या फायदा है? तो एक तरह से हम ये सोचेंगे तो एक सिक्के के दो पहले होते हैं, हार या जीत
जी।
अगर वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो कुछ तो करना ही पड़ेगा।
तो आपके आपकी राय में क्या होना चाहिए?
हम तो बोल ही दिए, तो पहला नंबर तो ये अशोभनीय और बड़ा ही कठिन काम है, क्योंकि हमारे जनतंत्र में ही जो हमारे सरकार और अच्छा करने वाले मंत्री हैं, वही अगर ये अग्रेसिव हो जाएंगे तो फिर हमारे जनतंत्र का क्या होगा? जनतंत्र का तो सुना ही नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ लाखों करोड़ों मिलके नेता को चुना जाता है और एक नेता अपने मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं और अग्रेसिव हो जाते हैं।
तो
और ये हमारे देश के
जी,
और हमारे देश के अंदर की बात है, जो हमारे जो देश के पिछड़े हुए हैं या उन्हें आदिवासी के उग्रवादी, वो अपने मूलभूत समस्याओं के लिए लड़ते हैं, लेकिन कई बार उनके मन में एक ये भी बैठ गया कि नहीं, हम तो इसी काम के लिए ही आए हैं, हमें ये ही करना है, सिर्फ उग्र ही फैलाना है, तो इसका तो कोई दूसरा विकल्प भी नहीं निकलता।
तो आपका ये कहना है कि हिंसा को मारने के लिए हिंसा की कोई जरूरत नहीं है, आप ये कह रहे हैं?
नहीं जरूरत है, लेकिन दूसरा कोई उपाय भी नहीं निकल रहा है, क्योंकि हर एक सिक्के के दो ही पहलू होते हैं।
जी, तो आप उसे जायज भी ठहरा रहे। ठीक है संजय जी, अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुनव्वर हुसैन की तरफ बढ़ते हैं। मुनव्वर साहब, आप पूरी बातचीत सुन रहे हैं।
जी, मैं मनोवर हुसैन सुरजापुर सुपौल से बोल रहा हूँ।
जी बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं?
चरमपंथ, मेरा कहना है कि चरमपंथ एवं माओवाद देश की बहुत बड़ी आंतरिक समस्या है, जो अभी तक नहीं सुलझा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। चरमपंथ का जवाब चरमपंथ एवं माओवाद का जवाब माओवाद से मात्र एक रास्ता नहीं है, और भी विकल्प है जो मिल बैठकर गौर कर हल निकालने की आवश्यकता है।
तो विकल्प आप क्या सोचते हैं?
एक मिनट, भारत की आजादी में हमें नर्म और गर्म दोनों रोल निभाने पड़े थे। अब मेरा ये कहना है कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बातचीत एवं समस्या का निदान कर जितनी आसानी से माओवाद से निपटा जा सकता है, हम समझते हैं कि उतनी सफलता गोलीबारी एवं हजारों जाने गंवाने पर हासिल नहीं किया सकती। मेरा ये कहना है कि आतंकवाद का जवाब आतंकवाद से नहीं, चरमपंथ का जवाब, लेकिन इसका बहुत सारा और सारा ऑप्शन है, और सारा विकल्प है
जी।
उस पर जो है मिल बैठ करके जो है
बातचीत करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर साहब अपनी बात रखने के लिए। हम लोग केपीएस गिल साहब के पास जाएंगे। गिल साहब, आपने दो श्रोताओं की बातचीत सुनी, जो वो बोल रहे हैं कि आतंकवाद से लड़ने के लिए, चरमपंथ से लड़ने के लिए जो है चरमपंथ का ही सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बातचीत नेगोशिएशंस के जरिए भी एक ऑप्शन हो सकता है जिसके जरिए सुलझाई जा सकती है बातचीत।
अभी अगर जब आंध्र प्रदेश में ये ख़त्म हुआ तो बातचीत किससे हुई? लेकिन इनका लीडर था, वो सिर्फ गाना गा रहा, पेट का सवाल है। यू जस्ट रेज दिस सेंटेंस, यू कैन टॉक टू पीपल हु आर सेन एंड रैशनल, यू कैन टॉक टू पीपल हु सिंग सॉन्ग्स एंड दे हैव लर्नड अप, एक सबक याद कर लिया, उसको जहाँ जाना वहाँ दोहरा देना बार बार। कैसे खत्म हुई वेस्ट बंगाल में, कैसे खत्म हुआ आंध्र में, और कैसे नहीं खत्म हो रहा छत्तीसगढ़ में?
जी, काउंटर टेररिज्म की जो बात कर रहे हैं, कश्मीर में इखवान बना, छत्तीसगढ़ में सलवा जुड़ूम बना, असम में सुल्फा का इस्तेमाल हुआ, लेकिन कितना सफल हुआ वो?
देखिए, पॉलिटिकल मिस्टेक्स हैव बीन मेड बाय इन द कंट्री, और उसमें तो मैंने कहा कि कुछ स्टेप्स हुए थे पंजाब में और असम में जो गलत थे, दैट आई हैव सेड मेनी टाइम्स। Naxalism I finished in Assam without firing a single shot, without touching a single human being. Table pe baat ke samne baat hoti thi. Agar स्टेट उस पॉलिसी को ठीक तरह नहीं फॉलो कर सकती तो क्या कहेगा?
इतने लोग मारे जा रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि बिना किसी के मारे हुए जो है बातचीत सफल रही है, तो मैं इससे इस बात से तो सहमत नहीं है गिल साहब।
सहमत नहीं है, आप असम में नहीं थे।
नहीं, आपने असम में काम किया है, हम जानते हैं।
Probably you were not even born at that. Not a single Naxalite was touched. That's why they left Assam. There's no Naxalism in Assam. They're trying to make a comeback. They're trying to make a comeback in other parts of the state. But state, I mean, where you do not have the chief ministers with the sagacity, or where the chief ministers are half mixed up with some other things, then these things happen.
तो इसके लिए क्या आप राजनीति को, राजनेताओं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि वो सही स्टेप्स नहीं उठाते हैं?
इंस्टिगेटर कौन है? अगर आप एक गांव में जाके 20 आदमियों को मार देते हैं
जी,
it starts a process. वो जो अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं और डेमोक्रेसी की बातें करते हैं, when you undermine the very foundation of democracy, तो आपसे क्या बात हो सकती है? तीन हत्ते आदमी, तीन आदमी बच्चे स्कूल बंद कर दिए, मेडिसिन हॉस्पिटल बंद कर दिए, ब्लॉक डेवलपमेंट वाले बंद कर दिए, जो कुछ काम स्टेट ने करना है वो ही नहीं होने देना, तो ये बातचीत का ताल्लुक है इससे? इससे क्या बातचीत होती है?
जी यहाँ पर गिल साहब एक मैं सवाल आपको आपसे पूछना चाहूँगी, ये फेसबुक पर है हमारे श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है विनीत कश्यप लखीमपुर खीरी से, उत्तर प्रदेश से, उन्होंने उनका कहना है कि अगर एक तरह से देखा जाए तो ये गलत कहा है, ये गले की फांस बन जाएगा, ना ये गले से नीचे उतरेगा ना ही गले के बाहर आ पाएगा, ये मनोहर पारिकर के बयान की बात कर रहे हैं। साथ ही इनका कहना है कि इसके दूरगामी परिणाम भयंकर हो सकते हैं, ये आगे चलकर भारतीय तालिबान बन सकता है, यदि भारत चरमपंथ का प्रयोग चरमपंथ से निपटने में किया गया तो ये भारतीय चरमपंथ भी पाकिस्तानी चरमपंथ की तरह देश के नागरिकों का दुश्मन बन जाएगा। बताइए इस बार इस जो टिप्पणी की है हमारे श्रोता ने, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बता रहे हैं कि तालिबान बन सकता है।
ये लखीमपुर खीरी से बोल रहे हैं, इनको ये ख्याल है कि पाकिस्तान का दुश्मन है, इनका ये ख्याल गलत है। पाकिस्तान को तो पूरा वो मिल रहा है, सपोर्ट कर रहे हैं उनको।
नहीं, ये बोल रहे हैं कि भारत भी तालिबान बन जाएगा।
कैसे बनेगा
अगर इसी तरह से चरमपंथ को बढ़ावा दिया गया, चरमपंथ का इस्तेमाल ही किया गया?
दिस इज रिलीजियस टेररिज्म ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसका अमेरिका मुकाबला कर रहा है, बातचीत से नहीं कर रहा, उनको बॉम्ब कर रहा है, कितनी कंट्रीज बॉम्ब कर रही हैं उनको?
तो जी जी यहाँ
बातचीत कर रहे हैं, यूरोपियंस बातचीत कर रहे हैं।
तो आपका कहना है कि बातचीत से समस्या का समाधान नहीं निकल सकता है?
बिल्कुल नहीं हो सकता
जी।
यहाँ पर सोचते हैं कि ये जो आएगी अब फैलती जा रही है, ये बातचीत से हम जाके उनको कहो कि बस ये मत करो, तुम अपनी स्टेट ले लो, जहाँ जाओ वो अपना नक्शे पे अपनी उंगली रखते वो उनका एरिया हो गया।
जी गिल साहब, यहाँ हम गौतम साहब को जोड़ना चाहेंगे। गौतम साहब, जो सलवा जुड़ूम की हम बात कर रहे थे, हम कोशिश कर रहे थे सलवा जुड़ूम के जो छाविंद्र कर्मा हैं उनसे को शामिल करने की, लेकिन उन्होंने हमारा कॉल नहीं उठाया। यहाँ बात करेंगे कि सलवा जुड़ूम जो है नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए उसका जो है उसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन वहाँ भी देखने को मिला है कि सरकारी आंकड़े जो बताते हैं कि 644 गाँवों को जो है उन्होंने विस्थापित कर दिया है, तो वो भी कारगर साबित नहीं हुआ। बहुत संक्षेप में,
एकदम कारगर साबित नहीं हुआ है। और मैं संजय मनोबर साहब ने जो बात करी है उसके संदर्भ में कुछ कहना चाहूँगा, खास करके संजय को, कि अफसोस यह है कि कभी सार्थक प्रयास किसी तरह का नहीं किया गया बातचीत का। अगर आप किसी पर पाबंदी लगा दें, उसे गैरकानूनी घोषित कर दें, उनको अंडरग्राउंड जाने को मजबूर करें और वो फिर अगर बंदूक उठाते हैं उसके बाद आप कहें कि ये तो आतंकवादी हो गए हैं, तो आप कोई रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं लोगों को जायज़ तरीके से ओपन तरीके से अपने काम करने का, जैसा कि बाकी लोग भी करते हैं हिंदुस्तान में एक जनतंत्र होने के नाते। वो अधिकार आप किसी से छीन लेते हैं और उसके बाद आप उनके ऊपर आरोप लगाएं कि आतंकी हैं, क्रिमिनल्स हैं, वगैरह वगैरह।
तो आपका कहना,
मेरे कहने का मतलब है कि बिल्कुल, क्योंकि आदिवासियों का जो मुद्दा है बहुत ही अत्यंत गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर उनका अनुभव रहा है कि उनके इलाके से उनके इलाके में जल जंगल जमीन का मुद्दा सबसे अहम है और उसको लेकर वो संघर्ष जो करते जा रहे हैं उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उन पर मनमानी करी जा रही है, तो उस संदर्भ में आप क्या करेंगे? आप तो लोगों को मजबूर कर रहे हैं उधर बंदूक उठाने के लिए। उसका समाधान तभी निकल सकेगा जब आप उनकी बातें, उनके जो सरोकार हैं, उनके जो मुद्दे हैं,
उस पर विचार करें और
सच्चाई से, ईमानदारी से निपटा जाए और विकास के नाम पर बड़े उद्योगों की हित का काम ना किया जाए।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो चरमपंथ से को चरमपंथ से ही निपटा जा सकता है, ये कहना है कि पीएस गिल साहब का, लेकिन गौतम लखा इस बात से सहमत नहीं है, इनका मानना है कि बातचीत होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का और श्रोताओं का इंडिया बोल में शामिल होने के लिए। और अब सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की बांग्लादेश यात्रा पर गए हैं। इस दौरान दोनों देशों ने आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए 22 से ज्यादा समझौतों पर दस्तखत किए हैं। सऊदी अरब ने कहा है कि उसने यमन से होती विद्रोहियों के दागे एक स्कड मिसाइल को मार गिराया है। तुर्की की पुलिस ने जानकारी दी है कि शुक्रवार को एक चुनावी रैली में हुए दो धमाके में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 400 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस मुकाबले में नोवाक जोकोविच ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे निखिल रंजन। इसी के साथ दिन भर के इस संक में बस इतना ही। आपसे 9:30 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।